एक फरवरी दिन भर दिन सोमवार मैं हूँ रेहान फदर। भारतीय कश्मीर में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल पीडीपी और बीजेपी का मन टटोलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार न बनाने पर पीडीपी की खिंचाई की।
अगर आपने हुकूमत नहीं बनानी है तो फिर खुदा के लिए आप इस असेंबली को तोड़िए, नए सिरे से लोगों को फैसला करने दीजिए। इसलिए ये लोग घबराए, इसलिए ये अलायंस नहीं तोड़ रहे, हुकूमत भी नहीं बनाएंगे।
देखेंगे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के वाम मोर्चे के साथ जाने की कितनी है संभावना। क्या कहते हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता?
इफ एनी प्रपोजल कम्स फ्रॉम अदर पार्टीज अदर देन बीजेपी एंड सीपीएम, माय पार्टी विल सीरियसली कंसीडर।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने पीडीपी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से सरकार बनाने के मामले में अपना रुख मंगलवार तक साफ करने को कहा है। वोहरा ने राज्य भाजपा प्रमुख सतपाल शर्मा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को मंगलवार को अलग अलग बैठकों के लिए न्योता दिया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद से 8 जनवरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। इसके बाद से ही राज्य में सरकार बनाने को लेकर असमंजस की स्थिति है। समझा जाता है कि महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी से राज्य में गठबंधन को जारी रखने के लिए कुछ कड़ी शर्तें रखी हैं। विश्लेषक मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने के फैसले के बाद से कश्मीर घाटी में पीडीपी की लोकप्रियता में कमी आई है, इसी वजह से महबूबा को निर्णय लेने में वक्त लग रहा है। अरुणाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को भेजा गया नोटिस वापस मंगवा लिया है। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत लिया गया है। अनुच्छेद 361 के मुताबिक राज्यपाल और राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों के निर्वहन के लिए किसी भी अदालत को जवाबदेह नहीं हैं। 26 जनवरी को केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दी थी, जिसका राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विरोध करते हुए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरूड में पिकनिक मनाने गए 13 छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत हो गई और 4 छात्रों को बचा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे में मृतकों की संख्या और ज्यादा होने की आशंका हो सकती है, क्योंकि कितने छात्र समुद्र में तैरने उतरे थे इसका अब तक पता नहीं चल सका है। जीका वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक आपात बैठक होने जा रही है, जिसमें तय किया जाएगा कि इस बीमारी को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया जाए या नहीं। पिछले सप्ताह ही जीका वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की थी और कहा था कि अमेरिका में 40 लाख लोग इस वायरस से ग्रसित हो सकते हैं। जीका के अधिकतर मामलों में संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं देते, इस वजह से इस बीमारी की गंभीरता और बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर के मुताबिक इस दिशा में अब भी खासी रिसर्च किए जाने की जरूरत है। जीका के बारे में हम अब भी बहुत ही कम जानते हैं। हालांकि इस बीमारी को अस्तित्व में आए 60 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी गंभीरता भी हाल फिलहाल ही सामने नजर आई है। ये डेंगू जितनी भयावह बीमारी नहीं है, इसलिए हमें इस बारे में और जानकारी हासिल करनी होगी। ये थे जीका पर बोलते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता, बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले 25 दिनों से गवर्नर राज है और मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी पार्टी ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि उनकी पार्टी पीडीपी बीजेपी के साथ पुराने गठबंधन को जारी रखे या नए चुनाव की तैयारी करे। इस बीच आज राज्य के भारतीय जनता पार्टी नेता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिले और कल राज्यपाल ने बीजेपी और पीडीपी नेताओं को जम्मू में तलब किया है, जहां उनसे सरकार बनाने के लिए अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। और जानकारी के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए राज्यपाल नरेंद्रनाथ वोहरा ने कल भाजपा और पीडीपी के नेताओं को जम्मू बुलाया है और इन्हें कहा गया है कि सरकार गठित करने संबंधी वो अपना अपना स्टैंड स्पष्ट करें। आज श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने विधायकों और पार्टी के अहम नेताओं की एक और बैठक बुलाई थी जिसमें बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रखने या न रखने पर गौर किया गया। इस बीच राज्य में 25 दिन से गवर्नर राज है और राजनीतिक अस्थिरता के रहते लोगों और व्यापारियों में बेचैनी फैल गई है। कश्मीरी व्यापारियों ने बाढ़ पीड़ित लोगों को रिलीफ न दिए जाने के विरोध में आज लाल चौक में प्रदर्शन किया और राज्यपाल शासन के प्रति गुस्सा
था। गवर्नर रूल, इतिहास,
लेकिन कुछ न कुछ तो करना, उत्तराखंड को लीजिए आप, नेपाल को लीजिए आप, क्या ये कश्मीर कुछ पॉलिसी हो रही है यहाँ पे? लोगों के इश्तेहार पे हमने आज प्रोटेस्ट किया और कर हड़ताल होगी, मुकम्मल कश्मीर बंद होगा, उसके बाद वो सख्त से सख्त और शायद तबाहकुन होगा हमारे लिए।
अपोजिशन नेता उमर अब्दुल्ला भी भाजपा और महबूबा मुफ्ती पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इनका कहना है कि महबूबा मुफ्ती चुनाव से डरती हैं।
और अगर आपने हुकूमत नहीं बनानी है तो फिर खुदा के लिए आप इस असेंबली को तोड़िए, नए सिरे से लोगों को फैसला करने दीजिए। इंशाल्लाह नए सिरे से जब इलेक्शन, इसलिए ये लोग घबराए हैं, इसलिए ये अलायंस नहीं तोड़ रहे, हुकूमत भी नहीं बनाएंगे, अलायंस भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन से डरते हैं। इनको मालूम है अगर आज इलेक्शन हुए इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी।
याद रहे 7 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद के देहांत के बाद इनकी उत्तराधिकारी और पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने तुरंत मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बजाय 3 सप्ताह तक पिता के सोग में राजनीतिक गतिविधियां त्याग दी। पिछले सप्ताह उन्होंने पार्टी के नेताओं और विधायकों की बैठकों का आरंभ किया तो इन्हें बीजेपी के साथ सरकार गठित करने या न करने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। लेकिन पिछले कई दिनों से ये बैठकें जारी हैं जिनके दौरान ये तय पाया कि पिछले वर्ष मुफ्ती सईद और भाजपा के बीच जो समझौता हुआ था इसे अपनाने के लिए भाजपा एक नया आश्वासन दे। उन्होंने पार्टी की कई बैठकों को संबोधित करते हुए बताया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी के साथ जिन शर्तों पर गठबंधन सरकार बनाई थी इन शर्तों का मान रखने के लिए बीजेपी के साथ नए सिरे से बातचीत करेंगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि वो कुछ दिनों में ही भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह से भी भेंटवार्ता करने वाली हैं। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के लागू किए जाने वाले मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को जारी नोटिस वापस ले लिया है। कोर्ट इस तर्क से सहमत था कि राज्यपाल को न्यायिक कार्रवाई में पूरी छूट हासिल है। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक संकट पर राज्य के राज्यपाल को भेजा गया सुप्रीम कोर्ट का नोटिस वापस लेने की कोर्ट से अपील की थी। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के राष्ट्रपति शासन के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों वाले संवैधानिक बेंच के नोटिस वापस लेने के फैसले ने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और संसदीय सचिवों के दफ्तरों से जब्त सारे फाइल और दस्तावेज शुक्रवार तक उन्हें मुहैया कराए जाएं। गवर्नर के दफ्तर ने ये फाइलें शुक्रवार तक अदालत में जमा करा दी थीं, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत में ये तर्क दिया कि राज्यपाल को न्यायिक कार्यवाही में पूरी छूट हासिल होती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सूरत सिंह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर वापस ले सकती है, लेकिन इस तरह के उदाहरण कम ही मिलते हैं। उनका कहना था कि इसका मतलब ये नहीं कि अदालत राष्ट्रपति शासन के फैसलों को खारिज नहीं कर सकती, इस पर फैसला अभी आना बाकी है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई राष्ट्रपति शासन के फैसलों को खारिज किया है।
जुबेर भाई, बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कई, क्योंकि ये मसला कब राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए कितनी बार आया कोर्ट के सामने। 1977 में जब जनता पार्टी जीत गई थी तो सभी सरकारें डिसमिस कर दी थी, तो उस समय 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि किस आधार पे जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। उसके बाद पूरी संविधान बेंच ने एचएम बोपाई के केस में कि जो राज्यपाल की ये जो शक्ति है ये कोई व्यक्तिगत पर्पज के लिए नहीं है, ये राष्ट्र के हित के लिए और संविधान के अनुसार कानून चले इसके लिए है।
अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और 60 सदस्यों वाली अरुणाचल विधानसभा में 21 विधायकों ने बगावत कर दी और सदन के डिप्टी स्पीकर को विधायक दल का नेता चुन लिया। इन 21 विधायकों को बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नबाम टुकी की सरकार अल्पमत में आ गई, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
दिन भर शॉर्टवेव 25, 31 और 41 मीटर बैंड, यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,595 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता 2017 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में वाम मोर्चे के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं और इसी को लेकर उन्होंने पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मुलाकात भी की है, मगर पार्टी हाईकमान अभी किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना पर कुछ भी निर्णायक तरीके से कहने को कतरा रहा है। दो हफ्ते पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस से आह्वान किया था कि पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस को आगे आना चाहिए। सलमान रवि की रिपोर्ट।
राज्य के नौ के दान करिए छे ए अवस्था থেকে সবাইকে বাঁচাতে হবে সব দলকে ভাগতে হবে আমরা কংগ্রেসকেও বলছি আপনারা গন্ডিকে।
यह है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो कोलकाता में आयोजित एक जनसभा में कांग्रेस को चुनौती देते हुए कह रहे थे कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो किसकी तरफ है। बुद्धदेव भट्टाचार्य कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकने के लिए उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा के चुनाव में किसी से भी हाथ मिला सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ बढ़ाए गए दोस्ती के हाथ के बाद सोमवार को पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेताओं का एक दल पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने पहुंचा। इस दल का नेतृत्व कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी कर रहे थे, जिन्होंने बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा,
ये गठबंधन किसके साथ जाएगी इसके बाद तो हम नहीं तय करते, हमारा आला कमान तय करेगी। हम लोग हमारा जो राय है वो राय इन लोग को व्यक्त किए हैं, जिस नतीजे में पहुंचना चाहिए वो तो आला कमान तय करेगी। बंगाल की भावना ये है कि जिस तरह के दहशतगर्द चल रहे हैं बंगाल में, तो ये बंगाल की आज की सत्तारूढ़ पार्टी और उनके तानाशाही से आम लोग मुक्त होना चाहते हैं।
ये तो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बात थी, मगर कांग्रेस के आला कमान की तरफ से पश्चिम बंगाल में किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन के कोई संकेत नहीं दिए गए। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने अभी कुछ तय नहीं किया है। पार्टी के प्रवक्ता सुखेंदु शेखर रॉय ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने विकल्प खुले रखे हैं और समय पर ही वो अपनी रणनीति तय करेंगे।
अगर दो डूबता हुआ बॉडी एक दूसरे को पकड़ लेती है उससे क्या होता है, दोनों ही डूब जाते हैं साथ में। आवर पार्टी ऑलरेडी स्टेटेड दैट इफ एनी प्रपोजल एट ऑल कम्स फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, नॉट टू स्पीक ऑफ कांग्रेस अलोन बट एनी पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्टिंग द लेफ्ट एंड बीजेपी, इफ एनी प्रपोजल कम्स फ्रॉम अदर पार्टीज अदर देन बीजेपी एंड सीपीएम, माय पार्टी विल सीरियसली कंसीडर वेदर दैट वुड बी फिजिबल और नॉट, वेदर बिकॉज वी आर मोर पुटिंग मोर इम्फेसिस ऑन दी आवर लॉन्ग स्टैंडिंग आवर लीडर्स लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन विद द पीपल ऑफ बंगाल।
पश्चिम बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्य अर्थशास्त्री निर्मला मुखर्जी कहते हैं कि वाम दलों और कांग्रेस के बीच गठजोड़ की संभावना बहुत कम ही नजर आती है।
म्यूनिसिपल इलेक्शंस वो परसेंटेज एनालिसिस से दिखा गया थोड़ा कम हो गया बीजेपी का, तो 10% जो है भाजपा का जो यहाँ होल्ड बढ़ रहे थे वो होल्ड अब देखा रहा है थोड़ा ढीला हो गया, ठीक है। तो 10% जो एडिशनल वोट मिला भाजपा को, वो जो एक्स्ट्रा जो वोट आया था वो वोट अब कहा जाएगा, कैसे स्प्लिट होगा।
पिछले लोकसभा के चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को लगभग 40% वोट मिले थे, जबकि वाम दलों को 30, कांग्रेस को 10 और भारतीय जनता पार्टी को 17% वोट मिले थे। इस बार तृणमूल कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रही है और इसलिए जानकारों को लगता है कि वो सिर्फ आखिरी क्षणों में ही अपने पत्ते खोलना चाहती है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
दिल्ली के झंडेवालान स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर चर्चा में है। मारपीट करते दिख रहे दिल्ली पुलिस के कर्मियों के साथ सादे कपड़ों में भी कुछ लोगों को देखा जा सकता है। वीडियो के बाद पुलिस की निंदा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक गलियारों में पुलिस का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं। वैभव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
दिल्ली पुलिस की छात्रों के साथ मारपीट का एक बर्बर वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पुलिस वाले छात्र छात्राओं के साथ बुरी तरह से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 30 जनवरी शाम का है, जब जेएनयू की वामपंथी छात्र पार्टी आयसा के सदस्य दिल्ली के झंडे वालान में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये लोग हैदराबाद के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई, जिसके बाद कुछ पुलिस वालों ने छात्रों को बेरहमी से पीटा, जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं। वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की कड़ी निंदा हो रही है और सख्त राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं इस मसले पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि अब तक उन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही वो कोई बयान दे पाएंगे। मारपीट की वीडियो के बाद प्रतिक्रिया देते हुए राजद के लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के जरिए कहा कि भाजपा और आरएसएस के घोर जातिवादी एजेंडे ने ही दलित छात्र की जान ली है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि भाजपा दिल्ली पुलिस को एक निजी आर्मी की तरह हर उस व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है जो भाजपा का विरोध करता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा,
बस्सी साहब जो छोटी छोटी बात पे तुरंत कैमरे के सामने आके बयानबाजी करते हैं, उनको अपने इस पुलिस के क्रूर चेहरे पर भी सफाई देनी चाहिए और बताना चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की जो लोग छात्राओं को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं।
साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस भाजपा और नरेंद्र मोदी के इशारों पर इस तरह की हरकत कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता भी पुलिस वालों के साथ मिलके छात्रों को छात्राओं को पीट रहे हैं, तो क्या मोदी की पुलिस संघियों के इशारे पे काम करेगी? क्या खाकी वर्दी वाले मोदी के राज में गुंडागर्दी पे उतर आए हैं?
वहीं मारपीट का वीडियो देखने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है कि ये एक चौंकाने वाला वीडियो है और वो दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले किस तरह से महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इतना बर्बरतापूर्ण रवैया अपना सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि महिला प्रदर्शनकारियों के लिए वहां महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी। सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं जिसे वीडियो में मारपीट करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन उसने कोई वर्दी नहीं पहनी हुई।
आरएसएस मुख्यालय के बाहर पुलिस की सख्ती।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। म्यांमार के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि म्यांमार की संसद में लोकतंत्र समर्थित पार्टी एनएलडी ने आज से कार्यभार संभाल लिया है। दशकों तक चले सैन्य शासन के बाद 3 महीने पहले हुए मतदान में म्यांमार ने सूची की पार्टी एनएलडी को चुना था। सूची ने वर्षों तक चले लोकतंत्र समर्थित संघर्ष के बाद हुए मतदान में ये जीत हासिल की है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ एक बार फिर वैभव श्रीवास्तव।
ये आवाज है उस वक्त की जब म्यांमार यानी बर्मा की संसद ने एक ऐतिहासिक सत्र की शुरुआत करते हुए नए स्पीकर के रूप में यू विन मिंट को चुना। म्यांमार के लिए 1 फरवरी का दिन इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई नई संसद ने अपना कामकाज संभाल लिया है। म्यांमार में हाल ही में चुनाव हुए थे। इसमें लोकतंत्र समर्थक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची की पार्टी एनएलडी को बहुमत प्राप्त हुआ। पिछले हफ्ते ही म्यांमार में एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ दशकों तक चले सैन्य शासन का समापन हुआ। हालांकि नई संसद में भी सेना के पास 1/4 सीटें रहेंगी, लेकिन सेना के समर्थन वाली सरकार लोकतांत्रिक तरीके से एनएलडी को सत्ता का हस्तांतरण कर रही है, एनएलडी पार्टी के सांसद खिन माउंग मिंट ने बताया। मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एनएलडी सरकार बनाएगी, हमने भी नहीं। सिर्फ म्यांमार ही नहीं, आज पूरी दुनिया हिल गई है। एनएलडी पार्टी के सांसद खेन माउंग मिंट के शब्द। राष्ट्रपति थैन सैन का कहना था कि आजादी के बाद ये पहला मौका है जब सरकार और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हुआ है। उन्होंने बताया कि इस अहम काम को पूरा करने का वादा किया गया था और वो भी पूरी प्रक्रियाओं के साथ, जो आज पूरा हुआ है। वहीं एक और सांसद मिंट सोई ने कहा कि उन्हें इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने पर गर्व है।
मुझे गर्व है कि मैं संसद का हिस्सा बनकर इस देश में बदलाव लाने की प्रक्रिया में भाग ले सकती हूँ।
सांसद मिंट सोई के शब्द। वहीं दूसरी ओर लंदन में बर्मा की मानव अधिकार कार्यकर्ता वाई हिन विंट का कहना है कि अब भी देश में काफी कुछ करना बाकी है।
I think it is very exciting for Burmese history.
ये बहुत मजेदार है क्योंकि संसद में कई चुने हुए लोग पूर्व राजनीतिक कैदी और महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। यह ऐतिहासिक दिन है, पर जहां तक हम जाना चाहते हैं उसमें अभी एक लंबा सफर तय करना बाकी है। सेना के पास काफी नियंत्रण है।
मानव अधिकार कार्यकर्ता वाई हिन विंट के शब्द। म्यांमार के पूर्व सैन्य शासक पहले से ही सूची को भविष्य का नेता बता चुके थे। बीबीसी संवाददाता ने बताया कि अब तक म्यांमार की संसद पर सेना की पृष्ठभूमि वाले लोगों का दबदबा रहता था, लेकिन अब करीब 50 सालों में पहली बार इसकी बागडोर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के हाथों में होगी। सैन्य शासन के दौरान एनएलडी को दुश्मन की तरह समझा जाता था और सूची समेत इसके सैकड़ों नेताओं को नजरबंद रखा गया था, लेकिन अब उन्हीं में से बहुत से लोग नई संसद के सदस्य हैं।
म्यांमार में एनएलडी ने कार्यभार संभाला। आज सोमवार है और आपको इंतजार होगा अपने पत्रों का। आज आपके पत्रों के साथ हैं स्वाति बख्शी और राजेश प्रियदर्शी।
आपकी राय श्रोताओं की चिट्ठियों के साथ आज मैं हूं स्वाति बख्शी और मेरे साथ हैं
राजेश प्रियदर्शी का। नमस्कार
राजेश जी। सबसे पहले मैं पोस्टकार्ड्स ही ले रही हूं। आज सबसे पहली चिट्ठी शिकायत से भरी हुई ओम प्रकाश पाठक की है
जी।
बलिया उत्तर प्रदेश से। कहते हैं कि आप अक्सर कहते हैं कि श्रोता कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय आप लोगों को लिखें, लेकिन जब कार्यक्रम ही सुनाई नहीं देते तो राय क्या खाक लिखेंगे। निवेदन है कि बीबीसी की तकनीकी टीम तक आप मेरी ये बात पहुंचा दें कि हमारे क्षेत्र में शॉर्टवेव पर प्रसारण अत्यंत खराब है। मैं बहुत मुश्किल से पहला अंक दिन भर का सुन पाता हूँ, लेकिन नमस्कार भारत तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता।
ओम प्रकाश जी नमस्कार, और पत्र लिखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम इस बात से वाकिफ हैं, हम ये जानते हैं कि शॉर्टवेव पर हमें सुनने वाले श्रोताओं को और जो जिनमें से बहुत सारे लोग हमें पोस्ट कार्ड पर चिट्ठी लिखते हैं, उनकी इस तकलीफ से हम पूरी तरह से परिचित हैं। और जब भी हमारे पास कोई भी शिकायत आती है तो हम उसको जो अपनी टेक्निकल टीम है उस तक ज़रूर पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं हैं और शॉर्टवेव की जो परेशानियाँ हैं वो बरकरार हैं। कभी उस पर मौसम का असर होता है, कभी दूसरी फ्रीक्वेंसीज का असर होता है, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रसारण कभी साफ और कभी ख़राब सुनाई देता है। आपने बहुत अच्छा किया हमें बताया और हम इसको ज़रूर अपनी टेक्निकल टीम तक आगे बढ़ा देंगे। और साथ में हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और अगर आप उस पर बहुत सारे तरीके हैं कार्यक्रम सुनने के, आप हमारी वेबसाइट पर सुन सकते हैं, आप ट्यून इन ऐप के ज़रिए सुन सकते हैं और भी दूसरे कई तरीके हैं, तो आप जो वैकल्पिक तरीके हो सकते हैं उनके बारे में भी सोचें।
उसी तरह की कुछ समस्या जो है मुरारी साह ने ठाकुरगंज बिहार से हमें चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने भी कुछ यही बातें कही थी राजेश जी। तो आप
मुरारी जी के लिए भी मेरा वही उत्तर है और मुरारी जी और ओम प्रकाश जी आप दोनों की जो शिकायत है या आप दोनों ने जो सूचना दी है कि आप नहीं सुन पा रहे हमें, इसको हम अपनी तकनीकी टीम तक जरूर पहुंचा देंगे।
गौतम चंद जांगिर ने पत्र लिखकर भेजा है झुंझुनू राजस्थान से। बहुत ही साफ इनकी हैंडराइटिंग है और एक कागज पर A4 शीट पर इनका पत्र लिखा हुआ है। मैं शामिल इसलिए करना चाहती हूँ इसको क्योंकि ये कहते हैं कि पहली बार ये चिट्ठी इन्होंने हमें लिखी है कार्यक्रम सुनने के बाद, और बहुत सारी तारीफ की है। रिहान फजल जी को सादर नमन भेजा है। कहते हैं कि हर रोज शाम 7:30 बजे कार्यक्रम सुनता हूँ और मुख्य समाचारों को व्यक्त करने का तरीका इनको पसंद आता है, खासकर 11 दिसंबर को जो कवि प्रदीप के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई वो इनको पसंद आई है, और इसके अलावा जो हम लोग चर्चा करते रहते हैं कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों पर उसकी इन्होंने काफ़ी तारीफ की है और कहा है कि मेरी पहली चिट्ठी है तो ज़रूर शामिल करें।
गौतम चंद जागीर जी ग्राम रघुनाथपुरा से जिला झुंझुनू, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पहली बार पत्र लिखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिखते रहेंगे। आपने जो तारीफ की है रेहान फजल की हम उन तक पहुंचा देंगे, और इसी तरह से आप तारीफ शिकायत और जो भी आप कहना चाहें हमसे कहते रहें अपने पत्रों के माध्यम से, हमें खुशी होगी।
ईमेल्स में ज़्यादातर जो रेहान फजल ने गांधी जी पर प्रस्तुति दी थी अपनी विवेचना में उसकी तारीफ हुई है। सुरेंद्रनाथ सिंह ने तारीफ की है, अजय कुमार कैथवली ने बलिया उत्तर प्रदेश से तारीफ की है, अभिषेक सिंह ने मोतीनगर कॉलोनी लखीमपुर खीरी से लिखा है। कहते हैं कि विवेचना मन को छू गई, उन्हें इस उत्कृष्ट कार्य के लिए नमन। और इन्होंने पूछा यह है कि क्या बीबीसी हिंदी का ऐप विंडोज़ फ़ोन के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन्हें उन्हें मोबाइल पर सुनने में दिक्कत है।
पहले तो गांधी जी के कार्यक्रम की चर्चा, जिसकी इन्होंने तारीफ की है, वो कार्यक्रम मैंने भी सुना और वाकई मुझे ऐसा लगा कि 30 जनवरी 1948 का जो दिन है वो आंखों के सामने आ गया। इतने सारे लोगों ने इतने विस्तार से उस दुखद दिन के बारे में, उस घटना के बारे में बताया। वाकई वो एक बेहतरीन कार्यक्रम था। आपकी जो बधाई है, आपका जो संदेश है, वो हम रेहान फजल तक ज़रूर पहुंचा देंगे। जहां तक ऐप की बात है, हमें अफसोस है ये कहते हुए कि विंडोज़ के लिए हमारा कोई ऐप नहीं है इस वक्त। आप सीधे ब्राउज़र से जाकर bbchindi.com पर और आप हमारे सारे कार्यक्रम सुन सकते हैं, लेकिन ऐप के ज़रिए हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। और अप्रैल मई के महीने में हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन ऐप को अपग्रेड करेंगे, जिसके बाद आप एप्पल और एंड्रॉयड दोनों पर सुन सकेंगे हमारे कार्यक्रम। लेकिन विंडोज़ फ़ोन की हमारी निकट भविष्य में भी कोई ऐसी योजना नहीं है, जिसके लिए हम अफसोस जाहिर कर सकते हैं आपसे, लेकिन ये सच है।
इंडिया बोल कार्यक्रम के लिए दो ईमेल्स हैं। रामदेव का एक ईमेल है, स्वामी रामदेव नहीं है मेरे ख्याल से ये कह ये रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी बनाने की योजनाएं हैं वो सब सिर्फ धन कुबेरों के ऐशो आराम और उन्हें समृद्ध बनाने की दृष्टि से बनाई गई हैं। दरअसल बीबीसी इंडिया बोल में जो चर्चा हुई थी स्मार्ट सिटी बनाम मौलिक विकास, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा ईमेल डॉक्टर लक्ष्मण झा का दुमका से है, वो भी कह रहे हैं कि जो इंडिया बोल कार्यक्रम था उसमें अतिथियों का चयन यथा योग्य नहीं रहा और कहते हैं कि श्री मोहनलाल जी को भी अनुमान हो गया होगा। अनुरोध है कि इन अतिथियों का चयन सटीक हो ताकि सप्ताह के इंतजार के बाद अच्छा व्यंजन परोसा जा सके।
बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें पत्र लिखने के लिए। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम आपकी राय में इतना ही। पता वही है, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल से अगर आप हमें पत्र भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और भाई ये देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है आदेश कुमार गुप्त के साथ।
भारतीय क्रिकेट टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया से उसी की जमीन पर खेली गई 2020 मैचों की सीरीज एक तरफा रूप से 3-0 से अपने नाम की। अब भारत अपनी ही जमीन पर ऑस्ट्रेलिया से 3 2020 मैचों की सीरीज खेलेगा। आज बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ खेलने वाली भारतीय टीम का ऐलान कर दिया और विराट कोहली को आराम भी दे दिया। विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020 सीरीज में पहले मैच में नाबाद 90, दूसरे मैच में नाबाद 59 और तीसरे मुकाबले में 50 रन बनाए। आज विराट कोहली 2020 में ICC के नंबर एक बल्लेबाज भी बने। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम में मनीष पांडे का चयन किया गया है, जिन्होंने पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें और आखिरी एक दिवसीय मैच में शतक जमाया था। उनके अलावा दिल्ली के ऑलराउंडर पवन नेगी को भी टीम में जगह मिली है। टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी संभालेंगे तो रोहित शर्मा, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह और भुवनेश्वर कुमार अन्य खिलाड़ी हैं। उधर बांग्लादेश में खेले जा रहे अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने लगातार तीसरी जीत हासिल करते हुए आज नेपाल को 7 विकेट से हरा दिया। भारत के सामने जीत के लिए 170 रनों का लक्ष्य था, जो उसने 18.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के कप्तान ईशान किशन और उनके जोड़ीदार बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पहले विकेट के लिए 124 रनों की साझेदारी कर जीत की बुनियाद रखी। ईशान किशन ने 40 गेंदों पर 7 चौके और 3 छक्के जमाते 52 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत ने तो केवल 24 गेंदों पर 9 चौके और 5 छक्के जमाते हुए 78 रन बनाए। वो प्रेम तमांग की ऑफ ब्रेक गेंद को उड़ाने की कोशिश में क्लीन बोल्ड हुए। इससे पहले अवेश खान और मयंक डागर की घातक गेंदबाजी के सामने नेपाल की टीम निर्धारित 48 ओवर में 8 विकेट खोकर 169 रन ही बना सकी। अवेश खान ने 34 रन देकर 3 और मयंक डागर ने 32 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। आज ही खेले गए अन्य मैचों में अफगानिस्तान ने कनाडा को 4 विकेट से और न्यूजीलैंड ने भी आयरलैंड को 4 विकेट से मात दी।
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी से सरकार बनाने के मामले में अपना रुख मंगलवार तक साफ करने को कहा है। अरुणाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए राज्यपाल को भेजा गया नोटिस वापस मंगा लिया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड़ में पिकनिक मनाने गए 13 छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत हो गई है। बीबीसी समाचार
दिन भर को यही समाप्त करते हैं। स्टूडियो संभाला था अजीत सारथी ने। रिहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।